एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
स्वागत है सबका। आज हम अल्बर्ट कामू की एक बहुत ही प्रभावशाली और कह सकते हैं कि जरूरी किताब द मिथ ऑफ सिसिफिस पर बात करने वाले हैं।
हाँ, ये उन किताबों में से है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है ना?
बिल्कुल। और इसका जो विषय है, जीवन का अर्थ खोजना, खासकर तब जब ये दुनिया, ये ब्रह्मांड एकदम उदासीन सा लगे।
सही कहा। ये सवाल तो हमेशा से रहा है, हर पीढ़ी इससे जूझती है, पर कामू का जो नजरिया है ना, वो जरा हटके है।
हटके कैसे?
वो मतलब बिना किसी झूठी उम्मीद के इसी बेमतलब सी लगने वाली दुनिया में पूरी शिद्दत से कैसे जिया जाए, इसका रास्ता दिखाते हैं। और आज के टाइम में जहां सब कुछ इतना अनिश्चित है, शायद ये बातें और भी ज्यादा रेलेवेंट हो गई हैं।
बात तो सही है। तो इस नजरिए को और गहराई से समझने के लिए पहले लेखक को थोड़ा जान लेते हैं, अल्बर्ट कामू।
हाँ जरूर। अल्बर्ट कामू 1913 में अल्जीरिया में जन्मे, बाद में फ्रांस में रहे। लेखक, दार्शनिक, पत्रकार, कई रोल थे उनके।
और 1957 में सिर्फ 44 साल की उम्र में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के विजेता।
कमाल की बात है। पर दुखद ये रहा कि इसके बस 3 साल बाद ही 1960 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई।
हाँ, और एक और दिलचस्प बात, उन्हें अक्सर लोग अस्तित्ववादी यानी एग्जिस्टेंशलिस्ट कहते हैं, पर वो खुद को इस लेबल से अलग रखते थे। वो अपने को एब्सर्डिस्ट कहना ज्यादा पसंद करते थे।
सही। और उनका जो फलसफा है वो कोई हवा हवाई नहीं है, उनके अपने जीवन के अनुभवों से निकला है। अल्जीरिया में गरीबी में बीता बचपन, वहां की तेज धूप, समंदर,
और फिर दूसरा विश्व युद्ध जिसमें उन्होंने फ्रांसीसी प्रतिरोध में हिस्सा लिया, ये सब उनके लेखन में झलकता है।
बिल्कुल। वो सिर्फ लाइब्रेरी में बैठकर सोचने वाले दार्शनिक नहीं थे, उनका दर्शन जीवन के असली संघर्षों, न्याय की लड़ाई और सुंदरता की तलाश से जुड़ा हुआ था।
उनकी लेखनी में गजब की ईमानदारी दिखती है, है ना? वो आसान जवाबों या वहमों से बचते हैं और मुश्किल विचारों को भी बहुत मानवीय ढंग से पेश करते हैं।
हाँ, जैसे उनकी एक और मशहूर किताब है द स्ट्रेंजर, वो भी इसी दर्शन का एक तरह से कहानी रूप है।
अच्छा, तो अब आते हैं इस किताब पर, द मिथ ऑफ सिसिफस। ये असल में है क्या, कोई भारी भरकम फिलॉसफी की किताब?
नहीं, इसे आप सिर्फ फिलॉसफी की किताब कहेंगे तो शायद पूरी बात न हो। ये एक तरह से जीवन जीने की गाइड भी है, खासकर उस वक्त के लिए जब पारंपरिक सहारे जैसे ईश्वर या कोई तयशुदा मकसद वो कमजोर पड़ने लगते हैं।
तो इसका मुख्य आइडिया क्या है?
किताब का जो सेंट्रल आइडिया है वो कामू के दिए एक शब्द के इर्द गिर्द घूमता है, एब्सर्ड, द एब्सर्ड।
एब्सर्ड, इसका मतलब क्या हुआ?
बेतुका।
हाँ, बेतुका कह सकते हैं, पर इसका एक खास मतलब है कामू के लिए। वो कहते हैं कि एब्सर्ड न तो सिर्फ इंसान में है, न सिर्फ दुनिया में, ये असल में इन दोनों के बीच का टकराव है, एक किस्म का मिसमैच।
टकराव? कैसा टकराव? है कि चीजों का कोई मतलब हो, कोई तर्क हो, कोई उद्देश्य हो, हम हमेशा कारण और स्पष्टता खोजते रहते हैं।
हाँ, ये तो है।
और दूसरी तरफ है ये ब्रह्मांड, जो हमारी इस तलाश पर, हमारी इन इच्छाओं पर एकदम चुप है, उदासीन, तर्कहीन। उसे हमारी जरूरतों से कोई लेना देना नहीं है।
अच्छा, तो ये जो हमारी मतलब कि पुकार और दुनिया की इस खामोशी के बीच का गैप है।
बिल्कुल। इसी गैप को, इसी टकराव को कामू एब्सर्ड कहते हैं।
और उनका मुख्य तर्क क्या है इस एब्सर्ड को लेकर?
उनका मेन पॉइंट ये है कि इस एब्सर्ड स्थिति से भागने के दो आम तरीके हैं और दोनों ही गलत हैं।
कौन से दो तरीके?
पहला, सीधी आत्महत्या, जीवन को खत्म कर देना क्योंकि वो बेमतलब लगता है। और दूसरा, जिसे कामू दार्शनिक आत्महत्या कहते हैं।
दार्शनिक आत्महत्या, ये क्या चीज है?
इसका मतलब है तर्क का रास्ता छोड़कर किसी चीज में आंख बंद करके विश्वास कर लेना, जैसे किसी धर्म में, किसी विचारधारा में या किसी परम सत्य में आस्था की छलांग लगा देना। आप मुश्किल सवाल का सामना करने के बजाय एक आसान जवाब में पनाह ले लेते हैं।
कामू इसे एक तरह की बौद्धिक बेमानी मानते हैं।
हाँ बिल्कुल। वो कहते हैं कि ये मुश्किल सवाल से भागना है, उनका रास्ता है इस अब्सर्ड का सामना करना, इसे स्वीकार करना और इसके साथ ही जीना सीखना।
लेकिन इसके साथ जीने से होगा क्या? अगर सब बेमतलब ही है तो फिर जीने का क्या फायदा?
यही तो कामू की खास बात है। वो कहते हैं कि जब आप इस बेमतलबी को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी झूठे सहारे के, तब आप असल में तीन चीजें पाते हैं, विद्रोह, स्वतंत्रता और जुनून।
विद्रोह, स्वतंत्रता और जुनून, सुनने में तो पॉजिटिव लगता है।
हाँ, ये निराशा का दर्शन नहीं है। ये कहता है कि हाँ, जीवन जीने लायक है। शायद इस अपसर्ड को जानने के बाद और भी ज्यादा जीने लायक है, क्योंकि तब आप बिना वहम के जीते हैं।
ये तो काफी दिलचस्प लग रहा है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं, किताब के अध्यायों के हिसाब से बात करें।
जरूर। पहला अध्याय है एक अब्सर्ड तर्क, एन अब्सर्ड रीजनिंग, और इसकी शुरुआत ही बहुत दमदार है। कामू लिखते हैं, केवल एक ही वास्तव में गंभीर दार्शनिक समस्या है, और वो है आत्महत्या।
बाप रे, सीधी बात।
हाँ, मतलब बाकी सारे दार्शनिक सवाल बाद में, सबसे पहले ये तय करना है कि ये जीवन जीने लायक है भी या नहीं। ये है बुनियाद।
और यहीं वो एब्सर्ड को और समझाते हैं, जैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी।
हाँ, वो रूटीन, उठना, काम पर जाना, खाना, सोना, एक मशीन की तरह। कभी कभी अचानक ख्याल आता है ना, ये सब किस लिए?
आता है बिल्कुल। या जब वक्त रेत की तरह फिसलता महसूस होता है, या जब हम प्रकृति को देखते हैं, पहाड़, समंदर, और वो हमें एकदम अजनबी, अपनी ही दुनिया में मस्त लगते हैं।
कामू कहते हैं ये सब वो पल हैं जब हमें अब्सर्ड का एहसास होता है, वो टकराव महसूस होता है।
और फिर वो उन दार्शनिकों की बात करते हैं जो यहां तक तो पहुंचे, पर फिर
हाँ, वो कहते हैं कि कीकेगार्ड, शेस्तोव, हुसरल जैसे दार्शनिकों ने एब्सर्ड को पहचाना, तो पर फिर वो तर्क का रास्ता छोड़कर आस्था की ओर कूद गए, ईश्वर में या किसी और अंतिम सत्य में। कामू के लिए ये एक तरह का समझौता था।
तो कामू का रास्ता क्या है, अगर आत्महत्या नहीं और आस्था की छलांग भी नहीं?
रास्ता है एब्सर्ड को स्वीकार करना और उसके साथ जीना, और इसी स्वीकृति से वो तीन नतीजे निकलते हैं। पहला, विद्रोह,
रिवोल्ट। किसके खिलाफ?
ये कोई बाहरी क्रांति नहीं है, ये एक अंदरूनी मानसिक विद्रोह है, अपनी इस एब्सर्ड स्थिति के खिलाफ, निराशा के खिलाफ, मौत के खिलाफ एक लगातार न कहना, हार ना मानना, अपनी चेतना को जिंदा रखना।
अच्छा, और दूसरा नतीजा?
स्वतंत्रता, फ्रीडम। ये वो आजादी है जो तब मिलती है जब आप भविष्य की झूठी उम्मीदें या मरने के बाद मिलने वाले किसी इनाम का इंतजार छोड़ देते हैं।
मतलब
आप किसी बाहरी नियम या अंतिम लक्ष्य के बंधेज में नहीं हैं। आप वर्तमान पल में जीने के लिए पूरी तरह आजाद हैं, अपने मूल्य खुद बनाने के लिए आजाद हैं।
और तीसरा,
जुनून,
पैशन।
कामू कहते हैं कि जब जीवन का कोई अंतिम शाश्वत मतलब नहीं है, तो फिर क्या मायने रखता है? मायने रखती है जीवन की मात्रा, क्वांटिटी, और उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी।
मात्रा मतलब ज्यादा से ज्यादा जीना।
हाँ, ज्यादा से ज्यादा अनुभव करना, महसूस करना, हर पल को पूरी शिद्दत से जीना, अनुभवों की विविधता को अपनाना, यही है जुनून।
विद्रोह, स्वतंत्रता, जुनून, ये एब्सर्ड जीवन के तीन स्तंभ हो गए।
बिल्कुल। फिर अगले अध्याय द एब्सर्ड मैन में कामू कुछ उदाहरण देते हैं। ये कोई नैतिक आदर्श नहीं है, बस जीने के तरीके दिखाते हैं।
जैसे
डॉन जुआन, वो एक रिश्ते से दूसरे में जाता है, हर अनुभव को पूरी तीव्रता से जीता है। उसे पता है कि कोई एक रिश्ता उसे अंतिम अर्थ नहीं देगा, वो अनुभवों की गिनती बढ़ा रहा है, मात्रा पर जोर दे रहा है।
दिलचस्प। और
फिर है अभिनेता द एक्टर, वो मंच पर कुछ घंटों में कई जिंदगियां जी लेता है। उसे पता है कि ये सब अस्थायी है, क्षणभंगुर है, लेकिन वो हर किरदार को पूरे जुनून से निभाता है।
ये एक तरह से दिखाता है कि शायद हमारी अपनी जिंदगी भी एक प्रदर्शन ही है।
हाँ, कह सकते हैं एक ऐसा प्रदर्शन जिसे पूरी ईमानदारी और शिद्दत से निभाना है, भले ही वो हमेशा के लिए ना हो।
और तीसरा उदाहरण,
विजेता, द कॉन्करर, ये वो व्यक्ति है जो दुनिया के संघर्षों में उतरता है, राजनीति, युद्ध, सामाजिक बदलाव। उसे शायद पता है कि उसकी जीत स्थायी नहीं होगी, या ब्रह्मांड के स्केल पर उसका प्रयास निरर्थक है,
लेकिन फिर भी वो लड़ता है।
हाँ, फिर भी वो लड़ता है पूरी तरह समर्पित होकर। उसका विद्रोह उसके कर्म में है, अंतिम परिणाम में नहीं, मानवीय गरिमा के लिए लड़ता है।
ये उदाहरण सोचने पर मजबूर करते हैं, शायद महानता सिर्फ मंजिल पाने में नहीं, सफर तय करने के अंदाज में है।
बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद तीसरा अध्याय है एब्सर्ड रचना,
एब्सर्ड क्रिएशन।
यहां बात कला और साहित्य की होती है। एक सच्चा एब्सर्ड कलाकार एब्सर्ड को खत्म करने या छुपाने की कोशिश नहीं करता।
तो फिर वो क्या करता है?
वो उसका वर्णन करता है, उस तनाव को, उस टकराव को बनाए रखता है, वो दुनिया की अराजकता को एक रूप देता है, लेकिन बिना ये झूठ बोले कि उसने कोई अंतिम जवाब पा लिया है।
और कुछ बनाना, कुछ रच देना, चाहे वो पेंटिंग हो या कहानी, ये अपने आप में एक विद्रोह है।
हाँ, इस चुप और उदासीन ब्रह्मांड के सामने रचना करना मानवीय चेतना का, मानवीय इच्छा का एक सबूत है। ये एक जुनून भरा काम है।
कामू यहाँ दोस्तोएव्स्की का उदाहरण भी देते हैं ना?
हाँ, वो तारीफ करते हैं कि दोस्तोएव्स्की ने कैसे उन किरदारों को उकेरा जो ईश्वर और अर्थ की तलाश में भटक रहे हैं, जो एब्सर्ड से जूझ रहे हैं,
लेकिन आलोचना भी करते हैं।
हाँ, आलोचना इस बात की कि अंत में दोस्तोएव्स्की अक्सर अपने किरदारों को ईसाई आस्था में समाधान दिला देते हैं, वो आस्था की छलांग लगवा देते हैं। कामू के अनुसार सच्चा एब्सर्ड कलाकार सिर्फ समस्या पेश करता है, समाधान का दावा नहीं करता।
और फिर आता है चौथा और सबसे मशहूर अध्याय, सिसिफस की मिथक।
द मिथ ऑफ सिसिफस।
हाँ
हाँ, ये वो रूपक है जिसमें सारे पिछले विचार एक साथ आ जाते हैं।
कहानी तो शायद बहुत लोगों ने सुनी होगी, ग्रीक माइथोलॉजी की कहानी है। सिसिफस नाम का एक राजा,
हाँ,
जिसे देवताओं ने एक अजीब सजा दी। सजा थी कि उसे एक भारी चट्टान को लुढ़काकर पहाड़ की चोटी तक ले जाना है,
और जैसे ही वो चोटी पर पहुंचता है चट्टान वापस नीचे लुढ़क जाती है,
और उसे फिर नीचे जाकर उसे दोबारा ऊपर ले जाना है,
और ये हमेशा अनंत काल तक चलेगा।
देवताओं ने सोचा होगा कि इससे ज्यादा निरर्थक और निराशाजनक सजा क्या हो सकती है, अंतहीन बेमतलब मेहनत।
बिल्कुल, लेकिन कामू इसी सिसिफस को अपना एब्सर्ड हीरो बनाते हैं।
हीरो? वो कैसे?
कामू कहते हैं कि सिसिफस का ये संघर्ष हमारी मानवीय स्थिति का एकदम सटीक रूपक है। हम सब भी तो रोज अपनी अपनी चट्टाने धकेल रहे हैं ना, वही दोहराव वाला काम, वही मेहनत जिसका शायद कोई अंतिम भव्य नतीजा न हो।
हाँ, ये बात तो सोचने वाली है।
पर कामू के लिए कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो नहीं जब सिसिफस मेहनत कर रहा है, बल्कि वो क्षण है जब चट्टान नीचे लुढ़क चुकी है और सिसिफस पहाड़ से नीचे उतर रहा है उसे फिर से उठाने के लिए,
वो वापसी का क्षण।
हाँ, उस क्षण में, उस ठहराव में सिसिफस अपनी नियति के प्रति पूरी तरह सचेत है। उसे पता है कि ये सजा है, ये बेमतलब है, ये कभी खत्म नहीं होगी, कोई भ्रम नहीं है। कामू लिखते हैं, इसी वापसी, इसी ठहराव के दौरान सिसिफस मुझे आकर्षित करता है,
और यही चेतना, यही जागरूकता उसे उसकी सजा से ऊपर उठा देती है।
एग्जैक्टली, वो अब सिर्फ देवताओं का शिकार नहीं है, वो अपनी किस्मत को जानता है, उसे स्वीकार करता है और फिर भी उसे जीने का चुनाव करता है,
और यहीं से वो तिरस्कार और खुशी की बात आती है।
हाँ, खुशी। ये सुनने में अजीब लगता है, पर कामू का तर्क यही है, जब सिसिफस अपनी यातना की पूरी बेतुकी सच्चाई को जानते हुए भी हर बार नीचे उतरकर चट्टान उठाने का फैसला करता है, तो वो अपने भाग्य का, देवताओं का तिरस्कार कर रहा है। वो कह रहा है, ये मेरी सजा है, पर अब ये मेरा चुनाव भी है।
उसका भाग्य अब उसका अपना है।
बिल्कुल, और इसीलिए कामू वो प्रसिद्ध पंक्ति लिखते हैं, ऊंचाइयों की ओर संघर्ष ही मनुष्य के दिल को भरने के लिए काफी है। हमें सिसिफस को खुश समझना चाहिए।
ये खुशी कोई अज्ञानता वाली या झूठी खुशी नहीं है।
नहीं, ये एक गहरी विद्रोही संतुष्टि है। ये जानने से आती है कि हाँ, ये मेरा संघर्ष है और मैं इसे अपनी शर्तों पर जी रहा हूँ।
वाह, ये तो वाकई एक शक्तिशाली विचार है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत के मुख्य संदेशों को समेटें तो क्या कहेंगे?
पहला और सबसे बुनियादी संदेश तो शायद यही है कि एब्सर्ड ही मानवीय स्थिति है। ये कोई प्रॉब्लम नहीं जिसे सॉल्व करना है, बल्कि जीवन की एक सच्चाई है। इसे स्वीकार करना ही समझदारी है।
ये एक लगातार चलने वाली दिमागी लड़ाई है। निराशा को, भ्रम को नकारना और जीवन को हाँ कहना उसकी मुश्किलों के बावजूद।
तीसरा, उम्मीद से मुक्ति ही सच्ची स्वतंत्रता है। भविष्य की या परलोक की आशाओं से आजाद होकर ही हम वर्तमान क्षण को पूरी तरह जी सकते हैं।
चौथा, जुनून और अनुभवों की मात्रा। जब कोई अंतिम मूल्य नहीं है तो लक्ष्य बन जाता है जीवन को ज्यादा से ज्यादा और पूरी तीव्रता से जीना।
और पांचवा, चेतना और स्पष्टता की शक्ति। अपनी स्थिति को बिना किसी धोखे के जानना और समझना ही विद्रोह की कुंजी है। सिसिफस इसीलिए खुश है क्योंकि वो अपनी निरर्थकता के प्रति सचेत है।
इन विचारों को अगर हम अपनी रोजमर्रा की भारतीय जिंदगी में देखें, जैसे वो सरकारी दफ्तरों के अंतहीन चक्कर लगाना, वो भी तो कई बार सिसिफिस की चट्टान जैसा लगता है।
हाँ, बिल्कुल। कामों का नजरिया शायद ये होगा कि उस चक्कर काटने की प्रक्रिया में भी अपनी गरिमा बनाए रखना, हार न मानना, यही विद्रोह है, नतीजा चाहे जब आए।
या फिर जैसे हम भारतीय जीवन की तमाम मुश्किलों के बावजूद त्योहारों को कितने जोश और जुनून से मनाते हैं, ये भी तो एब्सर्ड दुनिया में एक तरह का जीवन का उत्सव मनाना ही हुआ है ना?
सही बात है। या फिर समाज का वो दबाव कि तुम्हारी जिंदगी का एक मकसद होना चाहिए, कामों की सोच इससे राहत देती है। शायद कोई एक बड़ा मकसद है ही नहीं, हम कई छोटी छोटी चीजों से मतलब रच सकते हैं।
इस किताब में कुछ पंक्तियां भी बहुत यादगार हैं, कुछ साझा करें।
हाँ, एक तो वो शुरुआती लाइन ही, केवल एक ही वास्तव में गंभीर दार्शनिक समस्या है, आत्महत्या। ये हमें जीवन के मूल्य पर फोकस कराती है।
दूसरी,
अब्सर्ड की वो साफ परिभाषा। अब्सर्ड का जन्म मानवीय आवश्यकता और दुनिया की अनुचित चुप्पी के बीच टकराव से होता है।
एकदम क्रिस्टल क्लियर।
और तीसरी, वो सिसिफस वाली, ऊंचाइयों की ओर संघर्षी मनुष्य के दिल को भरने के लिए काफी है। हमें सिसिफस को खुश समझना चाहिए, संघर्ष में भी संतुष्टि का ये आइडिया कमाल का है।
एक और बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगी, जिसे जीने का कारण कहा जाता है वो मरने का भी एक उत्कृष्ट कारण हो सकता है। ये चेतावनी है कि अपना पूरा वजूद किसी एक बाहरी चीज पर टिका देना कितना नाजुक हो सकता है।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। अच्छा, ये सब सुनने में तो बहुत गहरा है, पर क्या इसे हम अपनी आम जिंदगी में उतार सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल तरीके?
हाँ बिल्कुल। पहला तो ये कि अपनी रोज की जो चट्टान है, चाहे वो ऑफिस का काम हो, घर की जिम्मेदारियां हो, पढ़ाई हो, उसे एक नया नजरिया दें।
कैसे?
उसे बोझ या सजा समझने के बजाय उसे अपने कौशल, अपनी लगन, अपने संघर्ष को जीने का एक मौका समझें। परिणाम की चिंता से ज्यादा उस काम को करने के तरीके में, उस प्रक्रिया में है गरिमा और शायद मतलब भी ढूंढें।
ये बर्नआउट से बचने में मदद कर सकता है शायद।
बिल्कुल। दूसरा, वर्तमान में जीने की कोशिश करें। भविष्य की चिंता या अतीत के पछतावे में आज के अनुभव खो जाते हैं। एब्सर्ड नजरिया हमें यहां और अभी पर फोकस करने में मदद करता है।
तीसरा, असली मजबूती बनाएं। सिसिफस की तरह ये झूठी उम्मीदों पर टिकी मजबूती नहीं है, ये हालात को स्वीकार करने और फिर भी डटे रहने से आती है।
चौथा, पर्पस या मकसद खोजने के प्रेशर से मुक्त हो। कोई एक सही जवाब नहीं है। आप कई चीजों में दिलचस्पी ले सकते हैं, कई तरह से जी सकते हैं, मायने बनाने के कई रास्ते हैं।
और शायद आखिरी, अपने फैसले खुद की समझ पर आधारित करें। कामू जिसे कहते हैं बिना अपील के जीना, यानी समाज, धर्म या परंपरा की मान्यताओं के बजाय अपने सचेत अनुभव और मूल्यों को ज्यादा महत्व देना।
मेरे लिए तो इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि कामू कैसे जीवन की सबसे मुश्किल सच्चाई कि शायद इसका कोई तयशुदा मतलब नहीं है, उसे स्वीकार करते हैं और फिर उसी अंधेरे से एक सकारात्मक, ताकत देने वाला रास्ता निकालते हैं। ये कहता है कि मतलब कहीं बाहर से नहीं आएगा, हमें खुद रचना होगा।
और मेरे लिए वो सिसिफस की खुशी वाला आइडिया, ये सोचना कि सबसे व्यर्थ लगने वाले काम में भी सिर्फ अपनी जागरूकता और अपने रवैये से हम संतुष्टि पा सकते हैं, ये याद दिलाता है कि असली शक्ति हमारे अंदर है, बाहरी परिस्थितियों में नहीं।
तो शायद आखिरी बात यही है कि जीवन का कोई पहले से बना बनाया अर्थ न होना, ये शायद एक बंधन नहीं बल्कि एक आज़ादी है, अपने रास्ते चुनने की, अपने जुनून को जीने की और अपने संघर्ष के जरिए खुद अपना मूल्य बनाने की आज़ादी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।